एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने 21वीं सदी की शुरुआत में ही लिटरेरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया था। जेडी स्मिथ की जबरदस्त डेब्यू नॉवल व्हाइट टीथ, जो साल 2000 में आई थी।
हाँ, और जेडी स्मिथ की जो अपनी कहानी है वो भी बहुत दिलचस्प है। उनकी माँ जमैकन थीं, पिता अंग्रेज थे, और वो लंदन के एक ऐसे माहौल में पली बढ़ी जहाँ मतलब दुनिया भर की संस्कृतियाँ एक साथ रहती थीं।
और वही माहौल इस किताब की आत्मा है ना?
बिल्कुल। ये किताब उस समय आई जब ब्रिटेन खुद से ये सवाल पूछ रहा था कि ब्रिटिश होने का मतलब क्या है। आप्रवासन, पहचान, मल्टीकल्चरलिज्म, ये सब उस वक्त की बहुत बड़ी बहसें थीं।
तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे, इसके किरदारों की जिंदगी में झांकेंगे और उन सवालों को समझेंगे जो ये किताब आज भी हमारे लिए उठाती है।
तो कहानी की शुरुआत होती है बहुत ही कह सकते हैं एक अजीब ढंग से।
हाँ, कहाँ से शुरू होती है कहानी?
कहानी शुरू होती है 1 जनवरी 1975 को। एक अंग्रेज है आर्ची जोन्स, जो अपनी जिंदगी से इतना तंग आ चुका है कि नए साल के पहले दिन अपनी कार में बैठकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है।
क्या बात है, नए साल का क्या शानदार स्वागत है,
है ना? पर यहीं पर स्मिथ का जो ह्यूमर है वो सामने आता है। आर्ची अपनी कोशिश में नाकाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पास का एक हलाल कसाई आकर उसे रोकता है।
अच्छा,
इसलिए नहीं कि उसे आर्ची की जान की परवाह है, बल्कि इसलिए कि उसकी दुकान के सामने सुबह सुबह डिलीवरी आनी है और आर्ची की कार रास्ते में है।
कमाल है, मतलब जिंदगी का इतना बड़ा फैसला भी एक ऐसे इत्तेफाक पर टिक गया।
हाँ, और आर्ची इसे एक इशारा मानता है कि शायद जिंदगी उसे एक और मौका दे रही है। और उसी रात मानो किस्मत उसे एक नई राह दिखा रही हो, वो एक पार्टी में जाता है और वहां उसकी मुलाकात होती है क्लारा बोडिन से।
क्लारा जो अपने परिवार से भाग रही है।
उसकी माँ एक बहुत ही कट्टर ईसाई संप्रदाय जेनोवा विटनेस की सदस्य है। क्लारा उस घुटन भरी जिंदगी से भाग रही है। दोनों मिलते हैं और कुछ ही हफ्तों में शादी कर लेते हैं।
तो ये दो टूटे हुए लोग एक दूसरे में सहारा ढूंढते हैं, लेकिन कहानी का जो असली दिल है वो तो आर्ची और उसके दोस्त समद की दोस्ती में थड़कता है।
हाँ, ये दोस्ती इस उपन्यास की रीढ़ की हड्डी है। समद इकबाल एक बंगाली मुसलमान है। आर्ची और समद द्वितीय विश्व युद्ध में एक साथ लड़े थे और तभी से दोस्त हैं।
और समद का किरदार बहुत बहुत जटिल है, वो अपने अतीत के बोझ तले दबा हुआ है।
बिल्कुल, उसे लगता है कि वो एक महान वंश का हिस्सा है। उसके परदादा मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के हीरो थे, और उसे लगता है कि उसे भी कुछ महान करना चाहिए, लेकिन वो लंदन में बस एक वेटर बनकर रह गया है।
और यही उसका सबसे बड़ा संघर्ष है।
हाँ, एक तरफ उसकी इस्लामी पहचान है, उसकी जड़ें हैं, और दूसरी तरफ ये पश्चिमी दुनिया, उसके तौर तरीके, उसके लालच, जिनसे वो बचना चाहता है पर बच नहीं पाता।
ये बहुत दिलचस्प है, मतलब हमारे पास दो दोस्त हैं जो दुनिया को बिल्कुल अलग अलग नजरिए से देखते हैं। एक आर्ची जो जिंदगी को बस बहने देता है, जिसके फैसले सिक्का उछालने पड़ता है होते हैं,
और दूसरा समद जो हर चीज में इतिहास, किस्मत और खुदा का हाथ देखता है।
और उनकी पत्नियां क्लारा और एल्साना वो इस तस्वीर को और भी दिलचस्प बना देती हैं।
बिल्कुल, क्लारा जो अपने अतीत से आजाद होना चाहती है, और समद की पत्नी एल्साना जो बेहद प्रैक्टिकल है। जहां समद बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें करता है, वहीं एल्साना घर चलाती है, वो जमीन से जुड़ी हुई है।
तो यहीं से उपन्यास का वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, जड़ों का क्या करें? क्या हमारी पहचान हमारे अतीत से तय होती है, या हम अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं?
और इस सवाल का जवाब देने के लिए कहानी अगली पीढ़ी तक पहुंचती है। कहानी 1980 और 90 के दशक में आगे बढ़ती है।
हाँ, अब फोकस बच्चों पर आ जाता है।
आर्ची और क्लारा की बेटी आयरी जोन्स और समद और अल्साना के जुड़वां बेटे मागद और मिल्लत इकबाल। और यहीं समद एक ऐसा फैसला लेता है जो इन सब की जिंदगी बदल देता है।
वो फैसला जो शायद हर प्रवासी माँ बाप के दिल में एक डर की तरह रहता है ना, कि उनके बच्चे अपनी संस्कृति खो देंगे।
बिल्कुल, समद को डर लगता है कि लंदन का माहौल उसके बेटों को भ्रष्ट कर देगा, इसलिए वो अपने एक बेटे मागिद को सही परवरिश के लिए बांग्लादेश भेज देता है,
ताकि वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
हाँ, लेकिन ये फैसला परिवार को दो हिस्सों में तोड़ देता है। मिल्लत लंदन में रह जाता है और मागिद बांग्लादेश चला जाता है।
अपनी जड़ों को बचाने की कोशिश में समद अपने परिवार की ही जड़ें हिला देता है।
क्या विडंबना है।
और इसी बीच आयरी की अपनी कहानी चल रही है। वो अपनी मिक्स्ड रेस पहचान से जूझ रही है। वो न पूरी तरह से काली है न पूरी तरह से सफेद। उसे लगता है कि वो कहीं की नहीं है।
और उसकी जिंदगी तब और उलझ जाती है जब वो मिल्लत और मागिद दोनों के लिए एक आकर्षण महसूस करने लगती है।
और यहीं पर जेडी स्मिथ अपना सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट करती हैं, नेचर बनाम नर्चर, मतलब प्रकृति बनाम परवरिश। एक ही खून, एक ही परवरिश के शुरुआती साल, लेकिन दो जुड़वा भाई बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं।
हाँ, मिल्लत जो लंदन में पला बढ़ा वो एक हैंडसम पॉपुलर लेकिन विद्रोही लड़का बनता है। वो पश्चिमी पॉप कल्चर में डूबा है लेकिन अंदर से खोखला महसूस करता है।
और अपनी पहचान की तलाश उसे कहाँ ले जाती है।
उसे ले जाती है एक कट्टरपंथी इस्लामी ग्रुप तक जिसका नाम है केविन, कीपर्स ऑफ द इटर्नल एंड विक्टोरियस इस्लामिक नेशन।
केविन मतलब एक कट्टरपंथी ग्रुप का नाम, इतना साधारण, इतना ब्रिटिश। स्मिथ का ह्यूमर यहाँ भी कमाल का
है ना। और दूसरी तरफ है मागिद, जिसे अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए बांग्लादेश भेजा गया था। वो सालों बाद जब लौटता है तो क्या बनकर लौटता है।
क्या?
एक पक्का तर्कवादी, नास्तिक और पश्चिमी विज्ञान का समर्थक। वो अंग्रेजों से भी ज्यादा अंग्रेज बन जाता है। समद की पूरी योजना पर पानी फिर जाता है।
ये तो कमाल की विडम्बना है। जिसे बचाने के लिए भेजा वही सबसे ज्यादा पश्चिमी बन गया, और जो पश्चिमी माहौल में रहा वो अपनी जड़ों की तलाश में कट्टरपंथ की ओर चला गया।
शायद स्मिथ यही कह रही हैं कि दोनों भाई अपनी अपनी तरह से चरमपंथ को अपना रहे हैं। एक धर्म का चरमपंथ तो दूसरा विज्ञान का।
और इस कहानी में एक और परिवार की एंट्री होती है, चाल्फेन परिवार।
हाँ, मार्कस और जॉयस चाल्फेन, सफेद पढ़े लिखे लिबरल लोग जो इन बच्चों को एक प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि वो इन बच्चों को सुधार सकते हैं।
मतलब वो नेक इरादे वाले हैं लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि वो अनजाने में एक तरह का सांस्कृतिक उपनिवेशवादी कर रहे हैं।
बिल्कुल, वो मिल्लत और मागिद की जिंदगी में घुसकर उन्हें अपनी विचारधारा के हिसाब से चलाना चाहते हैं।
तो अब हमारे पास सारे मोहरे बिछ चुके हैं। एक तरफ धार्मिक कट्टरता, दूसरी तरफ वैज्ञानिक कट्टरता, बीच में उदारवाद का अहंकार। ये सब धागे कहाँ जाकर मिलते हैं।
ये सारे धागे एक बहुत ही विस्फोटक क्लाइमैक्स में जाके मिलते हैं। साल है 1999, नए साल की शाम। एक बड़ा इवेंट हो रहा है फ्यूचर माउस को लॉन्च करने के लिए।
फ्यूचर माउस?
हाँ, यह एक जेनेटिकली मॉडिफाइड चूहा है जिसे मार्कस चाल्फेन ने बनाया है। इस चूहे को इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि उसे भविष्य में एक तय समय पर कैंसर हो जाएगा।
वाह, मतलब विज्ञान अब भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये तो हर कट्टरपंथी के लिए एक लाल झंडे की तरह होगा।
और होता भी यही है। उसे एक जगह पर उपन्यास के सारे किरदार इकट्ठा हो जाते हैं। मिल्लत और उसका ग्रुप केविन इस इवेंट का विरोध करने पहुंचते हैं। क्लारा की माँ और उनके साथी इसे दुनिया के अंत का संकेत मानकर वहाँ प्रार्थना करने लगते हैं।
और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि आर्ची और समद दोनों उसी इवेंट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे होते हैं।
और कहानी एक पूरा चक्कर काट लेती है। इवेंट की अध्यक्षता वही पुराना नाजी वैज्ञानिक डॉक्टर पेरेंट कर रहा होता है जिसे आर्ची और समद युद्ध में मिले थे।
अतीत, वर्तमान, भविष्य सब एक ही पल में टकरा जाते हैं।
बिल्कुल। और फिर टकराव होता है। मिल्लत मार्कस चाल्फेन को गोली मारने की कोशिश करता है। उसे रोकने के लिए आर्ची भी अपनी बंदूक चलाता है। पूरे हंगामे में आर्ची की एक, कह सकते हैं, इत्तेफाक से चली गोली डॉक्टर पेरेट को लग जाती है।
एक बार फिर आर्ची का एक इत्तेफाक वाला काम मिल्लत के सोचे समझे इरादे पर भारी पड़ जाता है।
संयोग एक बार फिर जीत जाता है।
तो उपन्यास का अंत किसी साफ सुथरे जवाब के साथ नहीं होता। कोई नहीं जीतता, कोई नहीं हारता, बस एक अराजकता है।
हाँ, और इसी अराजकता के बीच भविष्य का बीज भी है। कहानी के अंत में आयरी गर्भवती है
और
उसने मिल्लत और मागिद दोनों के साथ संबंध बनाए थे। जब उससे पूछा जाता है कि बच्चे का पिता कौन है तो वो ये जानने से इनकार कर देती है। वो कहती है ये कोई या तो या फिर वाली बात नहीं है।
तो आयरी का ये कहना कि ये कोई या तो या फिर वाली बात नहीं है, क्या यही उपन्यास का असली सार है?
मुझे तो यही लगता है। आयरी पुराने संघर्षों, इस्लाम बनाम विज्ञान, अतीत बनाम वर्तमान, काला बनाम सफेद से आगे निकलकर एक नई मिश्रित पहचान बनाने का चुनाव करती है। भविष्य शुद्धता में नहीं बल्कि इस मिश्रण में है।
और उपन्यास का शीर्षक व्हाइट टीथ यानी सफेद दांत, ये भी इसी से जुड़ता है। दांत हमारी विरासत, हमारे जीन्स का प्रतीक है, पर वो उस झूठी मुस्कान का भी प्रतीक है जो हम दुनिया को दिखाते हैं।
बिल्कुल। और ये बहुत दिलचस्प है कि आयरी डेंटिस्ट्री की पढ़ाई करती है, मानो वो अपनी जड़ों की मरम्मत करना चाहती है, उन्हें समझना चाहती है, न कि उनसे भागना। वो अपनी विरासत का सामना ईमानदारी से करना चाहती है।
ये उपन्यास हमें सिखाता है कि अपनी जड़ों को पूरी तरह नकारना या उनसे कट्टरता से चिपके रहना, दोनों ही रास्ते अधूरे हैं।
असल में पहचान कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जहां अतीत और वर्तमान के धागों से एक नया और अनूठा ताना बाना बुना जाता है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।